ईशावासमिदं सर्वम्। यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन शक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कसस्विद्धनम्। ॐ ईशावासमिदं सर्वम्। जगत्यां जगत् तेन शक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कसस्विद्धनम्। ईशावास उपनिषद का ये पहला मंत्र है। इसी मंत्र के आधार पर उपनिषद का नाम है। इसमें देखते हैं पहला शब्द है ईशावास्यम। इसी ईशावास्यम शब्द से ही उपनिषद का नाम भी पड़ गया, ईशावास्य उपनिषद। और समस्त उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद प्रथम माना जाता है। अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। और ईशावास्य उपनिषद का भी पहला मंत्र ये ईशावास्य मिदम सर्वम, ये विकिंच जगत्याम जगत, ये पहला मंत्र हो गया। और इस पहले मंत्र में ही ईशावास्य उपनिषद का सार और जितने भी अन्य उपनिषद हैं उन सबका जो मंतव्य है वो, और उसके बाद अपने जितने भी भारतीय संस्कृत के जितने ग्रंथों का विस्तार हुआ, चाहे वो सनातन धर्म के हों चाहे अन्य अन्य हों, उन सबका सार यही एक श्लोक है। इस श्लोक पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इसे याद रखें। ये मंत्र है बल्कि हमारे जीवन का मंत्र है। हमारा जीवन इसी मंत्र के अनुसार ही चले। जो ज्ञान इस मंत्र में दिया गया है वही हमारा ज्ञान हो, और जो व्यवहार इस मंत्र में बताया गया है वही व्यवहार हमारे जीवन का हो, तो फिर हमने मानो अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जी लिया। और हम धीरे धीरे करके जितने और भी बातें हैं भारतीय संस्कृति की, अपने आध्यात्मिक जीवन की, उन सब का विस्तार इसी श्लोक से मिल जाएगा। इसका पहले शाब्दिक अर्थ देखना चाहिए। शाब्दिक अर्थ, ओम तो सभी मंत्रों के पहले जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम परमात्मा का नाम है, वो तो है ही। उसके बाद ईशावास्यम माने ईश, जो ईश्वर है परमात्मा है। वास्यम वो सब जगह वास कर रहा है। इदम सर्वम, ये जो सब कुछ है, इदम सर्वम जगत, ये जितना भी जगत है सब में ईश्वर का वास है। यत्किंच माने जो थोड़ी छोटी से छोटी वस्तु है वो जगत्यान जगत, समस्त जगत में और जगत के परे भी जहाँ कहीं भी है वहाँ भी परमात्मा विद्यमान है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन जगत के लिए, इसलिए तेन माने इसलिए, त्यक्तेन भुञ्जीथा इस जगत के भोग्य पदार्थों का त्याग के द्वारा भोग करना चाहिए। त्यक्तेन भुञ्जीथा और मा गृधा, इसमें किसी वस्तु को पकड़ करके मत बैठे। गृधा मैंने पकड़ना, मा गृधा मत पकड़ करके बैठो। कस्तस्य धनम, ये धन संपत्ति भला है किसकी, ये प्रश्न है। कस्तस्य धनम, ये किसका है, माने भाव उसका ये है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा ही एक नित्य वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, और ये समस्त जगत उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है और उस परमात्मा पर ही आश्रित है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। परमात्मा और जगत का जो संबंध है उसे समझे। परमात्मा क्या है और जगत क्या है, बार बार विचार करते रहे। परमात्मा की महिमा ये है कि वो अपनी सत्ता से अपने आप से विद्यमान, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसका कभी निर्माण नहीं हुआ, सदा से ही एक समान विद्यमान है। जब काल नहीं था, देश नहीं था, तब भी परमात्मा विद्यमान था। परमात्मा देश और काल के अतीत है। अतीत है कि माने वो पहले अपनी आप सत्ता से विद्यमान है और फिर काल की उत्पत्ति बाद में हुई, देश की उत्पत्ति बाद में हुई और देश काल से फिर रचना जो हुई उसमें वो जगत की रचना हुई, वो भी बाद में हुई। इस प्रकार से हमारे सामने दो प्रकार की सत्ताएं हुई, एक तो वो जो देश काल के पहले है और अपने आप से विद्यमान है माने नित्य है, शाश्वत है, और दूसरी वो जो कि उसी सत्य है देश काल के अंतर्गत उत्पत्ति हुई। काल की जब उत्पत्ति हुई, देश की उत्पत्ति हुई और उसी के साथ साथ नाम रूपात्मक जगत की भी उत्पत्ति हुई। कोई भी विचारवान व्यक्ति इन दोनों सत्ताओं का अंतर समझ सकता है। दोनों में साफ अंतर है, एक अनादि अनंत होकर के विद्यमान है और दूसरा आदि और अंत वाला है, आदि है और अंत भी है। स्वयं समझने का प्रयास करें, अपने बुद्धि से ढूंढे देखें दोनों के अंतर को, अपने चित्त में धारण करें, बुद्धि में लावें। परमात्मा पहले है, जगत उसके बाद है। जगत से परमात्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई। जगत पर परमात्मा आश्रित नहीं है, परमात्मा पर जगत आश्रित है। परमात्मा के बिना जगत स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान नहीं रह सकता, किंतु जगत नहीं है तब भी परमात्मा वैसे ही विद्यमान है और जब जगत है तो भी परमात्मा वैसे ही विद्यमान है। परमात्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, अभाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जगत उत्पन्न होता है, विकृत होता है, परिवर्तित होता है, नष्ट होता है, ये लक्षण जगत के हैं। दोनों के ये अंतर देख करके संक्षेप में एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया कि परमात्मा है सत्य और जगत है असत्य। असत्य के माने ये नहीं कि हमें वो दिखाई देता है तो फिर असत्य कैसे, वो अलग बात। हमने जो अभी विचार किया उस दृष्टि से देखें कि एक वस्तु जो अनादि अनंत है, शाश्वत है, निर्विकार है, निर्लेप है, स्वतंत्र रूप से अपने आप विद्यमान है, उसे हमने सत्य नाम दिया। तो उससे विपरीत लक्षण वाला जो जगत है, जो आद्यंत वाला है, पराश्रित है, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो नश्वर है, इस प्रकार का जो वस्तु है उसका नाम, उससे विलक्षण होने के कारण, विपरीत लक्षण होने के कारण अगर परमात्मा को सत्य कहते हैं तो जगत को असत्य कहना ही पड़ेगा। चाहे हमारे इंद्रियां, हमारे मन इसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें, लेकिन बुद्धि के द्वारा जब विचार करते हैं तो ये निर्णय तो अपने स्थान में अटल है ही। इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो ऐसा है ही। जगत आद्यंत वाला है और परिवर्तनशील है और विकारी है, इसका प्रमाण क्या है? इसका क्या प्रमाण कि जगत का आदि अंत, जगत उत्पन्न हुआ ही उत्पन्न हुआ है और जगत कभी न कभी समाप्त भी हो जाएगा? तो आप देखेंगे, फिर विचार करें कि जितने भी रूपाकार वाली वस्तुएं हैं उन सबकी उत्पत्ति होती है। जैसे घट एक रूप है और घट को हम देखें, एक रूप आकार वाली वस्तु को रखा हुआ देखें, और कोई कहे कि देखो ये घट अनादि है और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा, तो किसी की बुद्धि से स्वीकार नहीं कर सकते। तो बुद्धि तुरंत कहेंगे कोई न कोई कुम्हार होगा जिसने मिट्टी लेकर के इसे बनाया होगा, जब बनाया होगा तब इसका आदि है, और जैसे और घट फूट जाते हैं तैसे ये भी एक दिन फूट जाए, खत्म हो जाएगा। ये धारणा घट को देख करके हमारी क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम स्वभावतः जानते हैं, चाहे विचार न किया हो, लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी रूप होते हैं, आकार जितने होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो सब उत्पन्न हुए होते हैं, सदा से उनकी सत्ता नहीं होती, और वो रूप एक दिन समाप्त भी हो जाते हैं, उनका अंत भी होता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार रूपवान वस्तुएं जो हैं, जिनके की आकार रूपवान वस्तुएं हैं जगत में, वो तीन प्रकार की हैं। एक तो ऐसी है जो हमारे सामने ही देखते देखते बनती हैं और देखते देखते नष्ट हो जाती हैं, जैसे जल की तरंगें हैं, मिट्टी से बना घट है, स्वर्ण से बने आभूषण हैं, ये सब हम देखते हैं हमारे सामने बनते हैं और हमारे सामने ही बिगड़ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका आदि भी है, इनका अंत भी है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कोई कोई रूप इस प्रकार के हैं जिनको बनते हुए हमने नहीं देखा, बिगड़ते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि हाँ वो हमारे सामने बने हैं। जैसे कि हमारे जन्म के पहले ही एक मकान बना हुआ देखा हमने, तो मकान को, उस मकान को बनते हुए हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे पिता बाबा वो कहते हैं कि ये मकान मैंने बनवाया, ऐसे बनवाया, वैसे बनवाया, फिर ऐसा नक्शा बनाया, फिर ऐसे विचार किया, फिर ये सामान लगाया, वो सामान लगाया, वो सब अपना बताते हैं कि ऐसे बनाया। तो इस मकान को हमारे सामने बना नहीं, लेकिन हम दूसरे के अपने और पूर्वज लोग हैं, अन्य लोग जो पहले थे वो बताते हैं कि हमारे सामने ये बना और ये अब बना हुआ हमें बना बनाया उपलब्धि दिखाई देता है। तो इसके माने है जो ये मकान जैसे रूप, जिनकी की आयु हमारी आयु से अधिक होगी, उनके बनने और बिगड़ने का, उनका वो भी बनते हैं और वो भी एक दिन बिगड़ते हैं, नष्ट भी होते हैं, लेकिन उनको हम स्वयं अपनी आंखों से बनते बिगड़ते नहीं देखे, दूसरे लोगों के जिनके सामने बना, दूसरे लोगों के जिनके सामने बिगड़ते हैं, वे लोग उसको जानते हैं, बताते हैं कि ये बनने बिगड़ने वाले हैं। तो ये भी प्रमाण है, जब दूसरे लोग इस प्रकार से बताते हैं तो वो भी प्रमाण है। लेकिन यदि पृथ्वी भी एक गोलाकार रूप है, तो इसके माने पृथ्वी का भी निर्माण कभी न कभी हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, लेकिन अपने पिता पितामह से सबसे पूछें कि इसका निर्माण किसके सामने हुआ, तो कोई बता नहीं सकता कि हमारे सामने पृथ्वी बनी, हमारे सामने पृथ्वी बनी, ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं। इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, जो ज्यादा काल तक बनी रहती हुई दिखाई देती हैं, उनका रूप बना रहता दिखाई देता है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं ये भी बनी है, पहले नहीं थी। सूर्य भी बना है, पहले नहीं था। चंद्रमा भी बना है, पहले नहीं था। ये नक्षत्र तारागण जितने भी दिखाई देते हैं, ये बने हैं, पहले नहीं थे। अब कब बने हैं, अब काल की गणना हिसाब लगाते लगाते बहुत काल हो जाए, जो गणना में भी ना आए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो जाए, और तब से ही बनी हुई सृष्टि चली आ रही हो, तो भले चली आ रही हो, लेकिन फिर भी उसके पूर्व कभी न कभी ये बनी है, क्योंकि ये है रूपवान है, एक रूप वस्तु का एक रूप है, इसलिए जितनी भी रूपवान वस्तु में होती हैं, उन सब की रचना होती है, वो अनाद नहीं होती, अनंत नहीं होती। ये बात भली भांत चित्त में धारण करना चाहिए। जैसे कि संसार के अन्य वस्तु में नाम रूप वात्मक हैं और आदि अंत वाली हैं, वैसे ही अपने शरीर को भी देखें, शरीर का भी कोई रूप है कि नहीं है? है, रूप है शरीर का, तो इसका भी आदि है कि नहीं है? हमें चाहे अपने शरीर का आदि याद न हो, देखा न हो, जानते न हो, लेकिन ये तो जानते ही आदि है शरीर का भी। हमने अपने आप नहीं देखा तो कैसे जानते हैं कि शरीर के, हमारे शरीर का आदि है और हमारी बर्थ डेट फलानी है? जानते हैं, हम अपनी जन्म तिथि बताते हैं, इसके माने हम ये बताते हैं कि शरीर का आदि वही काल था, उस दिन से ही शरीर प्रारंभ चला है। इसके बाद शरीर का भी आदि है, जैसे अन्य वस्तुएं जिनकी भी रूपवान है उन सबका आदि होता तो अंत भी होता है, तो शरीर का अंत होगा कि नहीं होगा? हाँ? अगर रूपवान वस्तुओं का सबका अंत होता है तो शरीर का भी अंत होगा। किसी किसी का शरीर जो है वो 70-80 वर्ष चलता है, किसी का 100 वर्ष चलता है, किसी का 125 वर्ष चलता है, ऐसा देखते हैं बहुत से आस पास लोगों के शरीर चलते हैं। कोई कोई लोग बताते हैं कि हिमालय पर्वत में ऐसे ऐसे योगी हैं जिनके शरीर 500-500 वर्ष से चले आ रहे हैं, 1000-1000 वर्ष से चले आ रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कोई ऐसी युक्ति निकाली हो कि शरीर दीर्घकाल तक चलता रहे, चल रहा होगा। लेकिन क्या ऐसा सुन करके जान करके आप ये कह सकते हो कि उनका शरीर अनंत काल तक बना ही रहेगा? कि मिल गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, जल जल में मिल गए, तो ये एक अलग से आकार शरीर का दिखाई दे, तो आकार नहीं दिखाई दे, उपलब्ध नहीं हो। इसके माने शरीर पंच महाभूतों पर आश्रित है, पंच महाभूतों से ही मिल करके अन्न बनता है, जिस अन्न को हम लोग खाते हैं। जब वो अन्न हमारे पेट में भीतर जाता है तो उसी से रक्त मांस इत्यादि बनते हैं और बन करके शरीर का आकार बना रहता है। शरीर में क्या बना रहता है? पंच महाभूत तो वो पहले भी थे, जब शरीर नहीं बना तब भी पंच महाभूत थे, और वो पंच महाभूतों से शरीर बना तो भी पंच महाभूत है ही शरीर में, और शरीर का आकार रूप समाप्त हो जाए तब ये पंच महाभूतों में फिर मिल गए। तो जो शरीर के पहले भी हैं, शरीर के बाद में भी हैं, जब शरीर बना तब भी हैं। शरीर की क्या विशेषता है? शरीर की एक विशेषता ये कि पंच महाभूतों का जो असेंबलेज है उनको सबको मिला करके जो एक प्रकार के आकार बन गया, बस आकार मात्र शरीर की विशेषता। और क्या स्वप्न लोक जो है वो भी जगत का ही एक भाग है, लेकिन वो सूक्ष्म रचना है। ऐसे ही स्वर्ग लोक और नरक लोक जो है वो भी अन्यान्य लोक हैं, वो भी सूक्ष्म लोक हैं। इस स्थूल जगत की तरह से वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म है? हम रोज स्वप्न लोक में जाते हैं, स्वप्न लोक की रचना देखते हैं, उसी से अनुमान लगा लें कि ऐसा ही स्वर्ग लोक है, ऐसा ही नरक लोक, ऐसा ही गंधर्व लोक है, ऐसा ही पितृ लोक है। इस प्रकार से विभिन्न लोक जो है वो स्वप्न की तरह से सूक्ष्म है, और जितनी सूक्ष्म सृष्टि है वो भी नाम रूपात्मक है, उसमें भी रूप है। स्वप्न में जितनी वस्तुएं देखते हैं वो सब रूपवान वस्तुएं सब होती है। पृथ्वी का रूप दिखाई देता है, आकाश का रूप दिखाई देता है, वृक्षों का रूप दिखाई देता है, व्यक्तियों का रूप दिखाई देता है, गाय बैल बकरियों का रूप दिखाई देते हैं, घास का रूप दिखाई देता है, नदियों का रूप दिखाई देता है, पहाड़ों का रूप दिखाई देता है। ये सब स्वप्न में रूप ही रूप दिखाई देते हैं, स्वप्न भी नाम रूपात्मक है, स्वर्ग भी नाम रूपात्मक है, नरक भी नाम रूपात्मक है, गंधर्व लोक भी नाम रूपात्मक है। जब हम नाम रूपात्मक कहते हैं तो इसके माने क्या हुआ? एक तो ये कि इनका सबका आदि अंत है, स्वर्ग का भी आदि है, स्वर्ग का भी अंत है, नरक का भी आदि है, नरक का भी अंत है। आद्यंत इस अर्थ में कि ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, सदा बने ही नहीं रहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये पराश्रित हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं पंच महाभूतों पर आश्रित है, इसी प्रकार से ये पंच महाभूत हम देखते हैं जगत के स्थूल पंच महाभूत जिनसे ये जगत बना है, ये आश्रित है सूक्ष्म पंच महाभूतों पर। सूक्ष्म पंच महाभूत कारण है और स्थूल पंच महाभूत उनके कार्य हैं। कार्य कारण पर आश्रित रहता है, इसलिए सूक्ष्म पंच महाभूतों पर स्थूल पंच महाभूत आश्रित हैं। और सूक्ष्म पंच महाभूत भी प्रकृति पर आश्रित हैं, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके ऊपर आश्रित है। प्रकृति जो तीन प्रकार की प्रकृति, सत्व रजस और तमस, वही प्रकृति। जैसे जगत स्थूल है, सूक्ष्म है, और फिर उसके बाद प्रकृति है, इसी प्रकार से अपने अंदर भी ये सब जगत का ही एक भाग अपना व्यक्तित्व भी है। इसमें भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये स्थूल शरीर के माने स्थूल सृष्टि हमारी है और सूक्ष्म शरीर के माने इसके भीतर एक सूक्ष्म सृष्टि है और उसके भीतर फिर एक जो है ये कारण सृष्टि है। ये तीनों सृष्टियां अपने अंदर हैं, तीनों नाम रूपात्मक हैं, तीनों आद्यंत वाली और तीनों ही क्रमशः एक दूसरे पर आश्रित है। ये स्थूल शरीर आश्रित है इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर और सूक्ष्म शरीर आश्रित है इस कारण शरीर के ऊपर आश्रित है और अंत में ये कारण शरीर किस पर आश्रित है। अंत में कोई न कोई वस्तु एक ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर और सब कुछ आश्रित हो लेकिन वो स्वयं किसी पर आश्रित न हो। प्रारंभ में वही बताया था, ये जो आत्मा है और परमात्मा है यही एक ऐसी वस्तु है जो अपनी सत्ता से विद्यमान है, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। अगर आत्मा की भी उत्पत्ति हुई होती, परमात्मा की उत्पत्ति हुई होती तो हम ये पूछते कि परमात्मा की उत्पत्ति किससे हुई। तो फिर बताते कि परमात्मा की उत्पत्ति अमुक वस्तु से हुई, उसके पहले वो था उसी से परमात्मा की उत्पत्ति हुई। लेकिन परमात्मा की उत्पत्ति का कोई कारण हमें नहीं मिलता कि जिससे परमात्मा की उत्पत्ति हुई हो। तो परमात्मा अपने आप से सदा विद्यमान है, अपने आप से विद्यमान है माने दूसरे ऊपर आश्रित नहीं है। तो इसके माने ये नाम रूपात्मक नहीं है। तीसरी सी बात, अगर इसका भी कोई रूप होता तो वो रूप किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न हुई होता, लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं, अपने आप से विद्यमान है और बिना रूप का है, स्वतंत्र अपने आप से उसकी अपनी सत्ता है, उसी से उसके ऊपर आश्रित हैं ये है सत्व रजस तमस तीन गुणों वाली जो प्रकृति है उसी ही आत्मा पर परमात्मा पर आश्रित है। जैसे जल पर तरंगे आश्रित हैं दृष्टांत में हम बाहर देखते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा की ही तीन तरंगे हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों उसी परमात्मा पर आश्रित हैं। लेकिन परमात्मा इन तीन गुणों पर आश्रित नहीं है, तीन गुण परमात्मा पर आश्रित हैं और ये तीनों गुण आद्यंत वाले हैं। कभी ये तीनों गुण व्यक्त होते दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते। जब तीनों गुण व्यक्त होते हैं तो फिर तीन गुणों से सूक्ष्म सृष्टि बन जाती है और सूक्ष्म सृष्टि से फिर स्थूल सृष्टि बन जाती है। इस प्रकार से समस्त जगत का विस्तार हो जाता है। बस इसको शांतपूर्वक विचार करना चाहिए, बार बार इसी का शांतपूर्वक इसका निरंतर चिंतन करता रहे, निरंतर करता रहे कि सत्य यही है। हमारे व्यक्तित्व में दो बातें हैं, एक तो ये हमारा व्यक्तित्व जगत का ही एक अंश है और दूसरी ओर वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। हम ईसा वास्मिदम, इस परमात्मा सर्वत्र वास करता है, सर्वत्र विद्यमान है, तो शरीर में भी वास कर रहा है, विद्यमान है तो परमात्मा भी है शरीर। इसके जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये तीनों शरीर तो जगत के ही एक अंग है, जगत से ही बने और जगत में ही स्थित हैं और जगत में ही लीन हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों शरीरों में चेतना भी है, ये जो चेतना का जो लक्षण है ये परमात्मा का है। वो परमात्मा ही अपनी चेतना अभिव्यक्ति हमारे व्यक्तित्व में कर सकता है। हम जानते हैं कि हम चेतन हैं, जड़ नहीं है, ये चेतना का ही लक्षण है कि चेतना में ज्ञान होता है। चेतना में ज्ञान प्रतीति अनुभव बोध ये चेतना के ही लक्षण है और ये लक्षण हम अपने आप में देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसलिए ये चेतना भी हमारे अंदर विद्यमान है। ये चेतना इन तीन शरीरों में से किसी शरीर की चेतना नहीं है, न स्थूल शरीर की चेतना है, न सूक्ष्म शरीर की चेतना है और न कारण शरीर की चेतना है। ये तीनों शरीर भौतिक हैं, पंच महाभूतों से बने हैं और पंच महाभूत जड़ हैं। लेकिन इन तीनों शरीरों में जो चेतना का अनुभव हो रहा है वो चेतना परमात्मा की चेतना ही इस शरीर में आकर के चेतना भास उत्पन्न करके चेतना की अनुभूति करा रही है। तो अगर अपने हम व्यक्तित्व को सावधानी से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम जगत के एक अंश हैं। दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि परमात्मा के भी हम एक अंश हैं। परमात्मा का भी एक भाग हमारे अंदर दिखाई देता है, अनुभव में आता है। इन दोनों से मिल करके हमारा व्यक्तित्व बना है। हम जो कुछ हैं इन दोनों का संयोग है। अब होता ये है कि वो परमात्मा की चेतना हमारे अंदर उपलब्ध है, सब लोगों में एक समान अभिव्यक्त नहीं है। किसी में परमात्मा की चेतना कुछ कम व्यक्त हो रही है, किसी में ज्यादा व्यक्त हो रही है। यद्यपि परमात्मा एक समान चेतना स्वरूप है, उसकी चेतना घटती बढ़ती नहीं। और आगे चलकर के इस उपनिषद में भी देखेंगे कि परमात्मा सर्वत्र एक समान व्याप्त और विद्यमान है, वो कहीं उसकी चेतना या अस्तित्व उसका घटता बढ़ता नहीं, वो एक समान सर्वत्र है। तो भी हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो परमात्मा की चेतना एक समान उपलब्ध नहीं, किसी की कम किसी की ज्यादा। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है हमारे आंतरिक जगत की रचना है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जहां परमात्मा आकर के व्यक्त होता है, हमारा हृदय, हमारे मन बुद्धि, जहां परमात्मा आकर के हमारे अंदर व्यक्त हो रहा है और हमें चेतना का ज्ञान करा रहा है, हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान करा रहा है कि मैं हूं, इस प्रकार का बोध होता है। मैं चेतन हूं, इस प्रकार का बोध हो रहा है। ये परमात्मा ही अपनी सत्ता का हमारे अंदर बोध करा रहा है, अपनी ही चेतना का हमारे अंदर बोध करा रहा है। लेकिन मन बुद्धि ये जितने ही सूक्ष्म होते हैं, जितने ही निर्मल होते हैं, जितने ही शांत होते हैं, उतना ही परमात्मा अधिक व्यक्त होता है। और जितने ही मन बुद्धि अशांत हुए, मलिन हुए, विक्षिप्त हुए, उतना ही वो परमात्मा अत्यधिक शक्ति के साथ में विद्यमान है। इसी स्वरूप से चैतन्य उपलब्ध है। बस इसी से अपने आप विचार कर लें कि कोई व्यक्ति अपनी चेतना, यह चेतना जिस परमात्मा आ रही है, उस परमात्मा की तरफ लोग बाग ध्यान क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि उनके अंदर वो परमात्मा चेतना जिसके के द्वारा कोई व्यक्ति विचार करता है, समझने की कोशिश करता है, वो चेतना धूमिल है, डल चेतना है, धूमिल है। इसलिए वो हो विचार नहीं कर सकता कि परमात्मा की। उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान, विचारमान और परमात्मा के निकट होता है। बोलने का तरीका परमात्मा के निकट होता है। परमात्मा के निकट होने का अर्थ ये कि जो परमात्मा का आनंद है, परमात्मा की शांति विश्राम है, वो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति का मन बुद्धि अशांत है, मलिन है, दुर्बल है, परमात्मा से दूर है, उनके मन बुद्धि में परमात्मा की वो सत्ता, वो आनंद उपलब्ध नहीं होता। व्यक्ति जीवन में अशांत, दुख, भय, चिंता, क्लेश, पीड़ाएं इनका अनुभव करता है, जबरदस्त अनुभव करता है। बस इसी का सब विश्लेषण करते करते हम इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि जितना अधिक हम अपने भौतिक व्यक्तित्व से जुड़े रहते हैं और उसी को अपना स्वरूप मानते हैं, उतना ही हम भौतिक बन जाते हैं, भौतिक बन गए। और जब हम अपने अंदर विद्यमान जो चैतन्य है, उस चेतना के महत्व को समझते हैं और उस चेतना को विकसित करते हैं, विकसित करने में अभिव्यक्त करते हैं, अधिक से अधिक अपने अंदर में चैतन्य की उपलब्धि होती है, प्रकाश होता है, तीव्रता उसमें आती है, उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। अपने इस आत्म चैतन्य के कारण से हम आध्यात्मिक हैं और तीनों शरीरों के कारण से हम भौतिक हैं। प्रायः होता यह है कि कोई व्यक्ति भौतिक अधिक हो जाता है तो उसमें आध्यात्मिक चेतना घट जाती है, जिसमें आध्यात्मिक चेतना बढ़ गई उसमें फिर भौतिकता घटती जाती है। ये है जीवन में सर्वत्र देखने में आता है, अपने आप में अनुभव करें, अपने आसपास लोगों को देखें तो उनके जीवन में इसी प्रकार से दिखाई देता है। स्वयं एक के बाद एक निर्णय लेते जाएं, विचार करते जाएं तो अपने आप दिखाई देता जाएगा कि भौतिक जगत स्वतंत्र अस्तित्ववान नहीं है, दूसरे पर आश्रित है। शरीर की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दूसरे पर आश्रित है। अगर शरीर में हम अभिमान रखेंगे, अपने आप को शरीर ही समझेंगे तो हमारे अंदर भौतिकता अधिक आ गई, हम भौतिकवादी हो गए। और भौतिकवादिता का परिणाम क्या हुआ, हम अपने आप को परतंत्र अनुभव करेंगे, क्योंकि भौतिक जगत परतंत्र है, शरीर भी परतंत्र है, इसलिए हम भी अपने आप को परतंत्र अनुभव करेंगे। भौतिक जगत जो है वो जड़ है, शरीर भी जड़ है। अगर शरीर में ही हम अधिक तादात्म करेंगे तो हमें जड़ता अधिक आ जाएगी। जड़ता अधिक आ जाने का क्या अर्थ हुआ कि हमारे विचार करने की शक्ति हमारी धूमिल हो जाएगी, कम हो जाएगी, विचार की सामर्थ्य नहीं रहेगी, जड़ता हो जाएगी। जड़ता के माने मूढ़ता, ना समझी, अज्ञान, ये बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि हम आत्मा की ओर झुकें, परमात्मा की ओर झुकें, चैतन्य की ओर झुकें तो उसमें चेतना है, प्रकाश है, अधिक समझ आएगी, अधिक ज्ञान का विकास होगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और उसी के साथ व्यक्ति में शांति की, सुखानुभूति की, आनंद की भी अनुभूति होगी। ये तो कोई व्यक्ति सहज ही विचार करे तो जो विचार कर सकता होगा तो वह व्यक्ति ये अनुभव करके अपने आप में जान भी सकता है। ये कोई कल्पना की बातें नहीं है, ये कहीं किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती करके लादने की बातें नहीं है। कोई भी विचार करेगा तो उसे ये अपने आप उपलब्ध होगा, अपने आप समझ में उसके आएगा अपने जीवन में कि हमारी स्थिति इस प्रकार की है। इसलिए अध्यात्म विद्या ये कहती है कि हमें बहुत अधिक भौतिकता की ओर नहीं झुकना चाहिए, हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप जो हमारा है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिकता की ओर अधिक झुकने में हमारा हित नहीं है। हित के माने न वहां शांति है, न विश्राम है, न सुख है, ये उसमें नहीं है। यदि हम आध्यात्मिकता की ओर झुकें तो वहां पर हमको शांति, विश्राम, आनंद, सुखानुभूति ये सब उसी ओर प्राप्त होने वाली है, इसलिए उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन शरीर तो है ही है, जब शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं भी है, शरीर है तो शरीर में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और शरीर की आवश्यकताएं होंगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें भौतिक जगत से ही अन्न आदि उपलब्ध होगा, वो उसको हमें अर्जित भी करना होगा और उसका उपभोग भी करना होगा, शरीर भी चलाना ही होगा। कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भौतिकता की इतनी अधिक हम उपेक्षा कर दें कि हम खाएं पिए भी नहीं, गर्मी सर्दी को भी जो है उसमें शरीर को बचाएं भी नहीं, तो शरीर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी होगी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए तो दूसरी पंक्ति में ऋषि सुझाते हैं, तेन तक तेन भुंजी था, खाओ पियो, वस्त्र पहनो, मकान में रहो, गर्मी सर्दी से शरीर को बचाओ भी, शरीर की जो आवश्यकताएं पूर्ति भी करो, लेकिन उनमें अत्यधिक लिप्त मत हो जाओ, उन्हीं को अपने जीवन का सब कुछ मत समझने लगो। अब दोनों बातें, त्यक्तेन और भुंजीता, उनका भोग भी करो और उनका त्याग भी करो। मन त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक भोग के माने ये कि कि अपनी बुद्धि से ये समझे रहो कि ये तो सब समाप्त होने वाले हैं ही, जब तक शरीर चल रहा है तब तक खिलाओ पिलाओ उसको, बस ना हमेशा शरीर बना रहेगा ना हमेशा अन्न बना रहेगा, ये तो सब नाशवान है ही। इसलिए त्यक्तेन के माने अनासक्त भाव से, उनमें आसक्त मत हो, इसमें अटैचमेंट मत रखो, न शरीर में आसक्त रहो और न शरीर के द्वारा भोग्य पदार्थ जो प्राप्त होते हैं शरीर को, उन भोग पदार्थों में भी आसक्त मत रहो। इस प्रकार से अनासक्त होकर के शरीर के भोगों को भोगने के लिए ऋषि लोग कहते हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, अपने जीवन में अभ्यास किया तो अभ्यास हो गया उनको, और जब अभ्यास किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब उन्होंने भौतिक जगत के भोगों को त्याग पूर्वक भोगा तो उसके परिणाम स्वरूप उनके अंतस चेतना, आत्मा की चेतना विशेष रूप से उनके अंदर उद्घाटित हुई, प्रकट हुई, और उन्हें अपने आत्मस्वरूप के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए और संपूर्ण रूप से दर्शन हुए। उनको ये भी मालूम हुआ कि ये आत्मा, ये चेतना जो हम अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, ये चेतना एक कोई छोटी सी चेतना नहीं है जो शरीर मात्र में ही विद्यमान हो।
प्रारंभ से जो विचार क्रम चला उसका स्मरण रखें, पूर्ण मदा शांति पाठ में परमात्मा और उसके उत्पन्न हुए नाना प्रकार का संबंध है ये संकेत किया गया। परब्रह्म परमात्मा अनादि अनंत सत्ता है, स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान नित्य तत्व है, वो चेतना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड एक रस है, व्याप्त है, पूर्ण है, ये उसके लक्षण है। उसे पूर्ण कहकर के ये सूचित किया कि वो अपने आप से अपनी सत्ता से विद्यमान है और नित्य विद्यमान है और सर्वत्र विद्यमान है, तब वो पूर्ण है। और पूर्ण से ये भी सूचित किया कि वो अपने आप में सब कुछ है, माने वो चेतना स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, और फिर उससे उत्पन्न हुआ समस्त जगत और समस्त जीव उससे भिन्न कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, वही जगत भी है, वही जीव भी है। मैंने ऐसा नहीं कि जगत रहित परमात्मा है तो अपूर्ण हो गया, जीव रहित परमात्मा है तो अपूर्ण हो गया। वो परमात्मा जो है जगत समेत, जीव समेत, सब मिला करके परमात्मा है, और जगत और जीव है ही क्या, ये तो उसी के रूप मात्र है, और ये रूप उसी में उत्पन्न हुए, उसी पर स्थित और उसी में समा जाने वाले, हीन हो जाने वाले हैं, ऐसा वो पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए कहा कि ईशावासिनिदम सर्वम्, वो हो परमात्मा ही समस्त जगत में व्याप्त होकर उसका स्वामी भी है। ईश है कि मैंने स्वामी है, और स्वामी है कि मैंने ये भी कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वांतर्यामी है। जगत की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से उसमें इस प्रकार की सामर्थ्य है, ऐसे गुण है। हर व्यक्ति का, हर प्राणी का वही परमात्मा अपना स्वरूप है। यद्य जीव के साथ में नाम रूपात्मक जगत का एक अंग शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी है, लेकिन ये माया में है, आभास मात्र, प्रतीत मात्र है। जीव का अपना वास्तविक स्वरूप तो आत्मा, सर्वात्मा, परमात्मा ही है। इसलिए इस ज्ञान को चित्त में निरंतर धारण करना चाहिए कि स्थिति यही है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा से जगत का संबंध क्या है, जीव का संबंध क्या है, ये है दृढ़ता के साथ में है स्मरण रखे, भूले और व्यवहार भी करें। जीवन जीवन का व्यवहार कैसा हो कि शरीर से कर्म होते रहें, बाह्य जगत के विषय हैं, भोग्य पदार्थ इंद्रियों को प्राप्त होने वाले वो प्राप्त होते हैं, उनका भोग भी हो लेकिन आसक्ति कहीं न हो, लिप्त कहीं न हो, मन कहीं इनमें रमण न करे। मन तो सदा अपने आत्मा में परमात्मा में ही रमण करता है, उससे बिलग न हो। भोगों की ये इतनी छूट क्यों दी? केवल इसलिए कि शरीर भी साथ में है और शरीर की यात्रा भी चलनी है, बस इस मात्र के लिए। जीवन शारीरिक जीवन की यात्रा चलती रहे इसके लिए खान पान की आवश्यकता है। आंखें भी है देखने के लिए, जिह्वा भी है साथ के लिए खाने के लिए, लेकिन इनका सबका केवल उद्देश्य यही है। और उसकी वासनाएं जो कुछ प्रारब्ध और उसके शेष रह गए हैं, ये प्रारब्ध जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, ये कालांतर में प्रारब्ध अपने आप कर्म के द्वारा भोग के द्वारा क्षीण होते रहेंगे। और जहाँ ये प्रारब्ध क्षीण हो गए उसके बाद कारण शरीर ही नहीं रह जाए। जब कारण शरीर नहीं तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं। ये तो कारण जो जब कारण है तभी कार्य रूप में सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, कारण उसको शरीर नहीं तो न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर वो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होकर के वास करता है और अपने आत्मानंद में स्थित रहता है और फिर अपने आप को देखता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे किसी प्रकार की अपूर्णता है ही नहीं, सब प्रकार की पूर्णता की स्थिति से प्राप्त हो। ये बात पहले श्लोक तक हमने कर देख ली थी, लेकिन ऋषि लोग ये बात भली बात जानते हैं, आसपास मान्य व्यक्तियों को देखते हैं, हर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। कहने में तो बहुत आसान, समझने में भी बहुत कठिन नहीं, ध्यान दे तो जल्दी समझ में आ जाए कि परमात्मा और जगत का जीव का क्या संबंध है, लेकिन फिर भी चित्त में टिकता नहीं है। और अनासक्त भाव से जीवन में व्यवहार में रहें ये भी बनता नहीं है। जिन लोगों से इस प्रकार से नहीं बनता, किस अपने ज्ञान की स्थिति में सदा जीवन जीने में असमर्थ है, उनके लिए नीचे की सीढ़ी को उतर करके जीवन जीने के लिए एक साधन और बताते हैं, वो इस श्लोक में है, वो कर्म साध्य साधन है। हम जानते हैं कि हमारे अध्यात्म में दो मंजिलें हैं, एक तो ये जो कि कर्म साध्य और दूसरी ये जो परमात्म ज्ञान साध्य है। कर्म साध्य जो है वो अपने स्वधर्म का पालन, सामान्य धर्म का पालन, और उसके द्वारा व्यक्ति को जो भौतिक सुख कीर्ति और स्वर्ग कीर्ति प्राप्त होते हैं, इनके भीतर घिरे रहने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्तियों से बिल्कुल ही निम्न प्रकार के व्यक्ति जो अधर्म में रहने वाले उनसे श्रेष्ठ है। शास्त्र इस प्रकार के जीवन जीने के लिए भी आज्ञा देता है, कहते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने धर्म को पहचाने, सामान्य धर्म को पहचाने, और कामना भी करें तो इस प्रकार के धर्म के द्वारा इनको जीते हुए बहुत सुख की कामना करें, कीर्ति की कामना करें, स्वर्ग की कामना करें। फिर स्मरण रखें कि हमारे समस्त वैदिक साहित्य में के दो भाग हैं, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञानकांड, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कर्मकांड वाला भाग धर्म का है, उसके ऊपर जमीन के सूत्र हैं जिसे धर्म सूत्र कहते हैं, वो धर्म सूत्र का आधार वेदों का पूर्व भाग है जिसे कर्मकांड कहते हैं, जिसमें कि कर्म की सब व्यवस्था दी हुई है। कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्म कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, कर्म का फल क्या होता है, किस प्रकार के संचित कर्म होते हैं, कैसे प्रारब्ध बनता है, कैसे पुनर्जन्म होता है, कैसे उनके द्वारा सुख दुख इत्यादि भोगने पड़ते हैं, ये सब व्यक्ति को जो ये है ज्ञान वेदों के पूर्व मीमांसा वाले भाग से, धर्म वाले भाग से प्राप्त है। और दूसरा तो इससे ऊपर उठ करके उपनिषद वाला भाग है, उस उपनिषद वाले भाग में है ज्ञान की बात है जो कि पिछले श्लोक में बताई प्रधान वही है। आगे चलकर के भी इसी उपनिषद में, ये भी एक उपनिषद है ईशावास, आगे चलकर के फिर देखेंगे आत्मज्ञान की शिक्षा उसमें फिर दी गई है। आगे मुख्य रूप से उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय आत्मज्ञान नहीं है, परमात्म ज्ञान ही है। ये है आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ज्ञान विज्ञान, और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ये उपनिषदों का विषय है। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो हो वैराग्य साधन, ज्ञान और विज्ञान, और उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, इन इतनी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। उपनिषद में देखेंगे वैराग्य की शिक्षा है, ज्ञान की शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, और फिर विज्ञान के द्वारा परमात्मा का ज्ञान और उसकी प्राप्ति और उसकी निश्चित हो जाना है। लेकिन जो व्यक्ति विरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके लिए कहते हैं कि पहले तुम ये सब करो, स्वधर्म का पालन करो, सामान्य धर्म का पालन करो, और भौतिक सुख कीर्ति और शक्ति प्राप्त करने की कामना। और ये कुछ दिनों कर लेने के बाद में इनकी आसक्ति को छोड़ने का अभ्यास करो, भौतिक सुख छोड़ो, उनमें आसक्ति मत करो, कीर्ति की कामना भी मत करो, स्वर्ग की कामना भी मत करो, लेकिन अपने स्वधर्म का पालन करते रहो, सामान्य धर्म का पालन करते रहो। ऐसा करने से तमोगुण रजोगुण दूर होकर के सत्वगुण की वृद्धि होगी और व्यक्ति में वैराग्य आ जाएगा और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके परमात्मा प्राप्त करने का व्यक्ति अधिकारी हो जाएगा। ये व्यवस्था संक्षेप में, संपूर्ण व्यवस्था इस प्रकार से है, उसको स्मरण रखना चाहिए और कृषि के आधार पर उपनिषद को देखेंगे तो मिलता जाता है। इस श्लोक में जो कुछ ऋषि, उपनिषद के ऋषि याज्ञवल्क्य जो कुछ कह रहे हैं वो यहाँ की बात कह रहे हैं। यदि आपसे व्यर्थ होकर के ज्ञान विज्ञान नहीं बन पड़ रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो कम से कम अपने धर्म स्वधर्म को पहचानो, सामान्य धर्म को समझो, और उस पर जड़ रह करके जीवन जीने का अभ्यास करो। चाहे इनकी कामना करो, चाहे इनकी कामना को छोड़ दो, तो और भी अच्छा है, लेकिन किस स्तर पर अच्छा है। अभी इस लोग में देखेंगे कर करके कि जो लोग इस स्तर का भी जीवन नहीं जीते, इसके माने वो और नीचे के स्तर जीवन जी रहे हैं। नीचे के स्तर के जीवन जीने के माने क्या कर रहे हैं? अधर्म में जीवन जी रहे हैं। अधर्म में जीवन जीने वाले की गति क्या होगी? पाप संचित करेंगे और दुख होगा।